मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान घर में जन्म लेने वाली लड़की, जिसने बादशाह वक्त उमर सुमरों की मोहब्बत को अपनी जमीन से वफा और अपने बाबुल की आबरू की खातिर ठुकरा दिया, मगर उसकी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया, वही मारुई आज भी किसी न किसी रूप में अपनी जमीन के फरसूदा निजाम के खिलाफ नबर्द आजमा है।
कमाल है अदा, मैं तो समझी थी आप अपने साथ कोई नेम नेम लाओगे, तो हम भी अपने बेगमात के सर्कल में उसकी नुमाइश करेंगी। मिसेस मेमन, यू नो मेरी बहू प्योर अंग्रेज है, अमेरिका से इंपोर्ट किए मेरे बेटे ने। यू नो आजकल के लड़कों को वैसे भी देसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं।
बिहेव योरसेल्फ लैला।
सॉरी अम्मा।
भाई मैम का इंतजार तो हमें भी था।
देखा अम्मा,
मेरे लड़के के लिए कोई कमी नहीं है यहाँ पे लड़कियों की, एक से एक हसीन है यहाँ पे।
भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियाँ रखी।
अच्छा अम्मा ये बताइए कितनी लड़कियाँ देखी हैं मेरे लिए?
वो है ना अपने सेठ इस्माइल चावल वाला, उनकी बेटी जुबैदा भाई, और वो अपने सेठ मुर्गी वाला है ना, उनकी सबसे छोटी बेटी गोगो, और हाँ वो बेगम परवेज, उनकी बेटी नंबर 8, क्या नाम है उसका, पेरोजा भाई वगैरह वगैरह।
अम्मा वहाँ तो कुछ भी नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे, होम सिकनेस होने लगी थी मुझे, वहाँ की तो हवा भी हमारे देश जैसे नहीं।
क्यों?
पता है अम्मा, जब वहाँ बर्फ पड़ती थी ना तो मुझे यहाँ की लू याद आती थी। भाई ये क्या लगाया? हाँ ये अब मजा आएगा।
ओहो बोरिंग।
अरे लैला की बच्ची मुझे महसूस तो करने दो, मैं अपने वतन वापस आया हूँ।
वंडरफुल, बड़ी मजेदार बात बताई। तो फिर क्या हुआ बेटा?
बस बाबा कोई महीना भर तो वो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता रहा, पेट्रोल पंप पर काम भी किया। एक दिन देखा आंखों में आंसू भरे हुए, लड़कियों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, कहने लगा मैं गोठ जा रहा हूँ, अम्मा बहुत याद आ रही है, वहां तो मैं पानी भी खुद उठकर नहीं पीता था।
दरअसल अदा अपने दिल का हाल बता रहे हैं।
जी नहीं, असल में हम माँ से मोहब्बत करते हैं, तभी तो जमीन के असीर हैं।
हाँ भाई बाप बेचारा किस गिनती में आता है।
अरे नहीं बाबा, असल में बाबा बाप जो है ना वो बेटे का दोस्त होता है जो हाले दिल भी जानता है।
सुन रही हो? इतनी जल्दी हाले दिल का ताल्लुक भी जोड़ लिया बाबा से इसने। हाँ
देखा देखा तुमने, हाँ तुम्हारी माँ कितनी जलस होगी। हाँ, तुझे
मैं कोई जलस नहीं।
तभी तो कहती हूँ बेटे माओ से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं, मुझ जैसी बेटी से मोहब्बत करें तो बात भी बने।
अरे यहाँ रखो, ज्यादा चमचा गिरी नहीं चलेगी। अच्छा
अम्मा के लिए है,
अम्मा के लिए है,
खाने दो बेटा, सब खाएंगे।
भगवान से अम्मा इतना भी सर पे ना चढ़ाए इसे,
क्या है मेरा आखिर बेटा।
देखो लड़की अब मैं आया हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें सर पर चढ़ाता है, और कल से हॉस्टल से अपना तमाम सामान यहाँ ले आओ। दिस इज माई ऑर्डर।
जी नहीं मैं वहीं ठीक हूँ, यहाँ बाबा को अपनी शुगर मिल से फुर्सत नहीं है।
ओहो।
और अम्मा को अपनी बेगमात एसोसिएशन।
क्यों मैं जो हूँ
तुम्हारा क्या भरोसा है?
अरे भाई तुम लोगों ने क्यों लड़ना शुरू कर दिया है, इतने दिन बाद भाई आया है तुम्हारा। हाँ
अच्छा भाई बेटा मैं बात सुनो लैला, अब गरम गरम कॉफी पिलाओ।
वाह
बख्शू कॉफी ले आओ।
बेटा क्यों बड़ी बुढ़ियों की तरह चिल्ला रही हो, जाओ किचन में जाके देखो।
ये हुई ना बात, अम्मा काम लीजिए इससे। बिल्कुल हड़ाम कर दिया आप लोगों ने इसे। जल्दी से
नहीं तंग करो शरीर।
नहीं नहीं, अब वही भाई बहन का लड़ाई
शुरू, रौनक शुरू हो गई।
हेलो यंग मैन, भाई दोपहर होने को आई है, उठोगे नहीं बेटा?
गुड मॉर्निंग
बाबा। नो इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून कहो।
सॉरी सॉरी बाबा,
अभी तक थकन नहीं उतरी?
वैसे मैं दो दिनों से दोस्तों और रिश्तेदारों से फुर्सत ही नहीं मिली।
तो इतनी जल्दी बेजार हो गए
बाबा? असल में यहां इंसान की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, जबरदस्ती की दोस्तियां और जबरदस्ती की रिश्तेदारियां।
उमर, एक चीज मैं महसूस करता हूं
जी,
कि कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बाहर जाकर बिल्कुल नहीं बदले।
नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं।
और कभी कभी ऐसा लगता है पता है कि तुम बहुत बदल गए हो।
नहीं बाबा, बाबा खड़े क्यों, बैठे ना प्लीज।
नहीं नहीं, मैं बैठने को नहीं आया, आज मैं तुमसे एक बड़ी राज की बात कहने आया
हूं। वो क्या बाबा?
सुना दो। हाँ, बात यह है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं।
ये क्या बात, लगता है आज आप बहुत मूड में।
रियली आई एम सीरियस, मैं थक भी गया हूं बेटा, अब ये जमाने की सारी झंझटें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
बिल्कुल नहीं बाबा, अभी आप बिल्कुल जवान लगते हैं, कोई फिक्र ना करें।
नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी मां पर रोब रखने के लिए जवान नजर आने की कोशिश करता हूं। लुक माय सन, अब ये सब चीजें तुम संभालो हर चीज, और मुझे इन झंझटों से आजादी दिलाओ ताकि मैं मजे से बैठकर सियासत करूं।
तो ठीक है, लेकिन देखना, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और नहीं मुझे इनकी कुछ समझ है। मैंने तो बस कंप्यूटर से अपना ताल्लुक जोड़ लिया है और यही सोचा था कि यहां आकर कुछ करूंगा।
बेटा ये कंप्यूटर वंप्यूटर इस मुल्क के बस की बात नहीं है, अलबत्ता पढ़ने और डिग्री लेने के हद तक तो ठीक है, बाकी इस मुल्क में सर उठाकर चलने के लिए कुछ और चाहिए।
समझा नहीं
बाबा। देखो मैं, तुम रईस इब्ने रईस हो बेटे, जब तुम जमीन पर जाओगे ना तो ये जमीन तुम्हारे पांव तले बिछ बिछ जाएगी, और जब तुम अपनी शुगर मिल संभालोगे तो ये गन्ना सोने की तरह चमकने लगेगा तुम्हें देखकर। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, ये तुम्हारे लिए है।
मेरे कंधों पर इतना बोझ डालते हुए आपको जरा भी रहम नहीं आता?
हाँ आता है बेटा, लेकिन बेटे पैदा ही इसलिए की जाते हैं ताकि उनके कंधों पर अपना बोझ रखा जाए।
ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी।
थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच।
तुझो मारियो उमर मनावण, तुझो मारियो असी मारवाड़ा मल चारियो असी डोखेड़ा वलर वारियो उमर मनावण, तुझो मारियो।
मुझे लगता है मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है।
मौत कहाँ, कत्ल बोलो कत्ल। अब तो मुझे भी लगता है तुम्हारे कत्ल के जुर्म में मुझे कैदे बामुशक्कत हो जाएगी। अरे क्या हुआ,
क्या हुआ?
जिंदगी में लगता है कोई गुनाह जरूर किया है जिसकी सजा अब यूं भुगत रही हूं मैं।
अरे मेरे घर चलो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सच, जब से अदा है ना तब से वो घर घर लगने लगा है।
खुदा के वास्ते लैला, तुम्हारी भाई का जिक्र सुन सुनकर अब मैं बोर होने लगी हूँ।
अरे तुम अदा से एक दफा मिलके तो देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह बदजौक देसी अंग्रेज, वो ये बोर कर देने वाली बातें, अपनी जमीन, रूट्स, शेर और शायरी, फोक म्यूजिक वगैरह वगैरह, मगर खुद है बड़े स्वीट।
अब बस भी करो लैला,
आखिर मेरे घर चलने में बुराई क्या है?
चलूंगी, कभी ना कभी तो चलूंगी, लेकिन लैला जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ मेरा ध्यान यही रहने दो।
तुम उतरो तो।
लेकिन लेकिन क्यों?
घर तो तुम चलती नहीं हो, अब कॉफी यहीं पियेंगे।
मुझे हॉस्टल छोड़कर तुम जहां जाना चाहो चले जाना,
तुम इस तरह शराफत से नहीं मानोगे। चलो उतरो, राइट नाउ, चलो उतरो भाई, चलो।
वेटर दो कॉफी। कैसा महसूस हो रहा है? ए मारवी, अच्छा लग रहा है ना?
क्या
दिल करता तुम्हें यहीं तमाम कर?
चाचा सॉरी, कहो क्या कहना चाहती थी? अब कह भी दो, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? जैसे दुनिया त्याग कर जमाने भर से चुपकर किसी पुरसुकून गोशे में बैठे हो। इस डाइनिंग हॉल के बाहर दुनिया कैसी भी हो, हमारी बला से।
पता नहीं लैला, मैं जहां से आई हूं ना वहां तो लोग जमाने के पैरों तले जीते मरते हैं, जमाने से छुपने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ वैसे ये हमारे गांव का होटल इस होटल से ज्यादा अच्छा है, ये तो मसनूई है, वो तो जैसे खुद रॉ पौधे की तरह अपने आप ही जमीन से उगाया हो।
I can't stand you at times, Marvi.
ले अम्मा।
अरे बेटा तो अपने बाबा के साथ ऑफिस नहीं गए?
नहीं अम्मा।
क्यों?
वैसे मैं फिलहाल इन झंझटों में पढ़ने का मूड नहीं। आप कहीं जा रही हैं क्या?
हाँ बेटा, क्या करूं, मैंने तो मिसेस मेवन से बहुत कहा कि इतने अरसे बाद मेरा बेटा आया, आज मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मानी नहीं। कहने लगी इस जलसे की सदारत तो आप ही को करनी है, फिर वहां औरत की आजादी पे पेपर भी तो पढ़ने हैं।
किस सिलसिले में हो रहा है सेमिनार?
वही बेचारी औरत की आजादी।
औरत अभी तक आजाद नहीं हुई, हालांकि इतने अरसे से तो कोशिश कर रही हैं।
बेटा तुम घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? तो तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम जमीनों पे हो तो तुम क्यों नहीं जाते?
बोर तो हो रहा हूं लेकिन
एग्जैक्टली लैला की बच्ची भी तो घर पर नहीं होती।
देखो बेटा तुम इसे समझाते क्यों नहीं, जब घर है तो उसे हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं लड़कियों की इतनी आजादी के कायल नहीं।
अम्मा औरत की आजादी के लिए तो आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, और शायद किसी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी तो हैं आप, फिर भी
वक्त का साथ तो देना पड़ता है ना बेटा। अपना सोशल स्टेटस रखने के लिए अगर हम इन चीजों में पार्टिसिपेट ना करें तो लोग हमें अहमियत ही नहीं देते, और खासतौर पर ये मिडिल क्लास के लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रवायात को भूल जाएं, इन्हीं की वजह से तो आज हम हैं।
क्या है?
मुझे नहीं पता, तुम्हें लैला को समझाना है। वैसे भी मैं आज कल उसकी शादी का सोच रही
हूं। मुश्किल असाइनमेंट तो है, कोशिश करूंगा समझाने की।
देर हो गई है, मैं चल रही हूं। मैंने नौकर से कह दिया है उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। ओके अपना ख्याल रखना।
ठीक है मैम,
खुदा हाफिज।
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हर इंसानी समाज में इंसान का किरदार दो हिस्सों में बटा हुआ है, नेक और बद, जालिम और मजलूम, और इन्हीं असरात को साथ लेकर इंसान माशरे में अपना रोल प्ले करता है। ये नेक और बद, जालिम और मजलूम की जारी और सारी जंग जहां एक तरफ सामाजिक टूट फूट का बाइस बनती है, तो दूसरी तरफ यही जंग इंसानी इर्तका के लिए नए नए रास्ते भी तलाश करती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम मिस महावी?
जी सर, नहीं सर।
ओके।
लौट भी आए मैडम, अब ऐसी भी क्या ख्वाबों की उड़ान कि हम नजर ही नहीं आते। जहाँ ख्वाबों के पर ही कटे हुए हों वहाँ उड़ान कहाँ मुमकिन, पर कहाँ है भाई? तुम्हें नजर नहीं आ भाई, हम अंधे हैं क्या? कभी कभी तेज रोशनी की आधी आंखें छोटी छोटी और मामूली चीजों को नहीं
देखती। आज सजी है इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए।
क्या नाम है आपका?
सिकंदर। घर वाले और दोस्त मुझे प्यार से सिक्कू कहते हैं। अच्छा आप भी कह सकती हैं।
ये आपने लिखा है?
ऐसा प्यार भरा जुमला मेरे अलावा और कौन लिख सकता है?
शर्म आनी चाहिए आपको, आप जैसे गैरतमंद लोगों की वजह से ही बेचारी लड़कियां तालीमी इदारों तक नहीं पहुँच पाती, और जो पहुँच पाते भी हैं उन्हें भी यहाँ से निकलने पर मजबूर कीजिए। जहालत का राज होगा और आप खूब ऐशते रहेंगे।
किस सोच में पड़ा है?
हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
मारुल के अब्बा ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहा है?
कोई बात नहीं, बस यूं।
तेरी आंखों में आंसू दे रहे हैं फिर भी कह रहा है कि बस ऐसे ही।
बस धीमारी याद आ गई थी, पता नहीं कैसी होगी गरीब की औलाद, माँ बाप के होते हुए जैसी यती।
हाँ देखा, देखा कैसा दिल जल रहा है अब तेरा। कहा था ना तुझे कि अपनी पांव से दूर मत भेज उसे, लड़की जात है। पर तू तू किसकी सुनने वाला है? अब बैठ के आंसू पी और दिल जला अपना।
अरे अरे मुझे वो डर नहीं है जो तुझे खा रहा है। अरे पता नहीं कैसे तुम्हें अपनी बेटी पर शक है।
मुझे कोई शक वक नहीं है, बाहर जाकर लोगों की बातें सुन। तूने तो कानों में उंगलियां डाल रखी है, पर दिल तो मेरा दुखता है ना मेरा।
अरे अरे करती क्या है, मेरी धी है मेरी, लोगों की नहीं है। अरे तेरे इन लोगों से ज्यादा मैं अपनी बेटी को जानता हूं। अरे तेरे लोगों को मैंने लिख कर नहीं दी थी सरकारी कागज पर, कल जब वो बड़ी अफसर बन जाएगी तो तेरे ये लोग मेरे दरवाजे के बाहर लूस लूस करेंगे।
भले लूस लूस करेंगे, बड़ी अफसरानी बनेगी फिर तू बेटी की कमाई खाएगा, इससे तो अच्छा है कि डूब के मर खेत बेचारा बुढ़ा हो जाएगा शादी के आस में।
अरे अरे माधोई माधोई, जमाना बदल गया है, जमाना बिल्कुल बदल गया है। मैं उसकी शादी जरूर करूंगा, मगर अपने पैरों पर खड़ा करके उसकी शादी करूंगा। हाँ, कम से कम तेरी मेरी तरह बड़े लोगों के पैरों में हाथ जोड़ कर बैठना न पड़े उसे। अरे जमाने को समझ, जमाने को समझ मालूई।
जमाने को मैं समझ चुकी हूं, जमाना वैसे का वैसा ही रहेगा, तेरा दिमाग फिर गया है समझे। जब ना लोग पागल पागल कहकर पत्थर लेकर तेरे पीछे दौड़ेंगे फिर तुझे अकल आएगी और पता चलेगा।
अरे अरे ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है जैसी दुश्मन, अरे हर वक्त हथियार लिए बैठी है। हाँ, हर वक्त हथियार। अरे अरे मैं तेरा शोर हूं, ऐसी वैसी शय नहीं हूं। अरे सारे गांव के लोग मुझे साई साई कहते हैं और तू कह दिया मेरा दिमाग फिर गया है, मैं पागल हो गया हूं।
मारल के अब्बा, सच पूछो तो मारल मुझे भी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है।
मारुई थी, मेरा भी वही हाल है जैसा शाह भिटाई ने कहा है, लग लग के हवा धूल में अटा अंग अंग मेरा, यूं सांस उठ रही है जैसे इंतजार हो तेरा। पता नहीं कैसी होगी तू, तुझे देने के लिए कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, बस खाली हाथों तुझे इंसानों के समंदर में फेंक कर अब सोचता रहता हूं। पता नहीं इंसानों के समंदर में तू भी डूब गई होगी या किनारा मिल गया होगा तुझे, बस जागती रहना। तख्तो ताज हमारे भाग में हो या ना हो, रत जगे तो हमारे बस में है। ये दुनिया तो बस ऐसी है कि जो सो गया वो डूब गया, फकत तुम्हारा बूढ़ा बाप मास्टर पालनी।
मुझे तो लगता है सस्सी की तरह तुम्हारे पीछे बन बन भटकूंगी मैं, कहां कहां नहीं ढूंढ रहे तुमको, तुम हो यहां बैठी हुई हो। अरे ये बिन मौसम बरसात कैसी। अच्छा ये क्या है, जरा देखो तो।
लव लेटर।
सच बताओ किसने लिखा।
बाबा ने।
अच्छा तो इसमें रोने की क्या बात है, गोट याद आ रहा है क्या। ओहो, एक हम लोगों में यही बुराई है, बात बे बात बस गोट याद आने लगते हैं।
यही तो खूबी है हम लोगों की।
एक तो तुम्हारी ये फिलोसफीज मेरे समझ से बाहर है।
अच्छा ये बताओ तुम थी कहां सुबह से।
मैं गई थी घर। जब से अदा है ना तब से मुझे घर बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी लाई हूं।
खुशखबरी? वो क्या?
ये बताने से पहले कुछ मांगूंगी, एक मुन्नी सी ख्वाहिश का सवाल है बाबा।
अब कोई नाजायज सी ख्वाहिश मत करना।
क्यों, मैं कोई मंशियात फरोश नजर आती हूँ?
मेरी प्यारी सी दोस्त हो ना।
प्लीज
बताओ।
अच्छा पहले वादा करो, कल बाबा और अम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैंने अपनी फ्रेंड्स में से सिर्फ तुमको बुलाया और तुमको आना पड़ेगा। नो इनकार मार भी।
अच्छा आ जाओ।
अल्लाह मेरी अच्छी फ्रेंड मारवी,
हड्डी फसली तोड़ दोगी तुम।
अरे टूट जाने दो, और आ जाएंगी।
अच्छा मेरे रोजगार के मुताबिक बताओ।
कैसे आंखें चमक गई, बड़ी सेल्फिश हो।
अब कह भी चुको।
अच्छा एक घर में तीन बच्चों को पढ़ाना है, पूरे 1500 रुपए मिलेंगे।
सच? और जाना कहाँ होगा?
ये बताऊंगी तो तुम मेरे सर फाड़ दोगी।
अब बताओ भी।
अच्छा बताती हूँ, और सर फाड़ना हो तो फाड़ देना। उस घर के और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक दीवार है। मैं भी तो थोड़ी सेल्फिश हूं ना, सोचा इस बहाने तुम पे कब्जा तो रहेगा।
थैंक यू।
यार अली नवाज, हर साल आज के दिन तुम हमें यह दावत दे के ये याद दिलाते हो कि भाभी आपको बेपना चाहती है, चाहे हमें कुछ एहसास कमतरी होने लगता है कि हमारी बेगम इतनी नहीं चाहती है।
ये तो किस्मत
है, इसमें कोई शक नहीं है, किस्मत तो बात है। माशाल्लाह लाजवाब बेगम है आपकी।
बहन आपने अपनी उम्र के लिए कोई लड़की तो ढूंढ ली होगी। आपने कहा वैसे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं, एक से एक लड़की है, लेकिन मैंने अली नवाज से कह दिया कि अपने खानदान में शादी नहीं करूंगी। इसका मेंटल लेवल इतना ऊंचा है कि खानदान में उस लेवल की कोई लड़की ही नहीं। हाँ भाई फेडरल सिस्टम की तो जिंदगी ऐसी होती है, हमारे तो रूट्स है ना, और फिर पुश्तमों से लोग चले आ रहे हैं हमारे जो किसी बात कुछ नहीं हो घर के अंदर, बस इम्पोर्टेंट चीजें हो। अब तुम देखो ना जिस मग में मैं कॉफी पीती हूँ वो भी अब पेरिस से इम्पोर्ट किया। हाँ फिर तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी आंटी, यू मस्ट
प्लीज जरा मुस्कुराइए और जरा
बेटा ये हमारे हमारे दोस्त आए हैं। अच्छा बड़े बेटा इधर आए, आपको बुलाएं। यही
लगता है अली नवाज साहब के साथ।
हाँ ये देखिए
आइए
आइए भी
कम ऑन आइए डी।
हाँ यस
हाय रूममेट, बड़ा इंतजार कर, मैं तो डर गई थी कि तुम आओगी नहीं, एक तो रिक्शा नहीं मिल रहा और फिर तुम्हारा घर ढूंढने में तो देर होगी। अच्छा अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊं। बाबा मारवी से मिले बाबा।
ओह माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, तुम्हारा जिक्र हमेशा ले रहा करते हैं। नाइस टू मीट यू।
शुक्रिया। मैं तुम्हें अम्मा से मिलवा दूँ। अम्मा भला बताइए तो ये कौन है?
तुमने तो मेरी बेटी पे पूरा कब्जा कर लिया, बस तुम्हारी तारीफ करती रहती है।
उसके आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि मुझ पर कब्जा कर लिया।
बड़ी खुशी होती है जब कच्ची आबादी से लड़कियाँ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी तक जाती है। ये मेरी बेटी लैला की क्लास फेलो है, किसी गांव से आई है एमए करने के
लिए। यहाँ तो फैंसी ड्रेस शो शो हो रहे हैं। अदा ये मारवी जिनका जिक्र मैं आपसे करती है।
अच्छा अच्छा कैसे हैं आप?
थैंक यू
जो आप यहाँ आ रही हैं।
चलो
आ गई?
नहीं, वो असल में लैला पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे हॉस्टल में तो पहुंचना है ना।
हाँ लैला, मेरे ख्याल में किचन में मेहमानों के लिए कॉफी बनवा रही हैं। आप चल के बैठे ना उनके साथ।
नहीं मैं यहीं ठीक हूँ।
मौसीकी से दिलचस्पी है आपको?
हाँ, लेकिन ऐसे माहौल में बैठकर मौसीकी सुनने का कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ।
हाँ माहौल तो वाकई ऐसी है और शायद मस्नूई भी है और लोग भी मस्नूई हैं। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भूल कर यहाँ आ गई।
नहीं, भूल तो मैं कभी नहीं सकती। हाँ ये और बात है कि मैं लैला को नाराज भी नहीं कर सकती। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। मैं तो डरी गई थी कि कहीं तुम पैदल ना निकल पड़ी हो।
अरे ये तो जा रही थी, मैंने रोका नहीं।
लैला मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब मुझे चलना चाहिए।
तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो?
तुम तो मेरी हदें जानती हो।
हाँ भाई, एक तो तुम्हारी हदें जाकर दुश्मनों के सरहदों पर जा लगती हैं। चलो अदा, तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देंगे। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ चलती मगर क्या करूं, बहुत बुरी तरह आंटीज और अंकल्स में फंस चुकी हूं।
आइए प्लीज, मैं आपको छोड़ आता हूं। आइए ना। इतना कम बोलती हैं और फिर भी लैला जैसी बातों में लड़की से आपकी दोस्ती है।
दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा बोलना जरूरी तो नहीं।
आपका नाम बहुत अच्छा है, मारवी।
हमारे नाम बस ऐसे ही रख दिए जाते हैं पुकारने के लिए।
आप खुद भी तो बहुत मुख्तलिफ हैं, बल्कि बहुत मुख्तलिफ।
मैं तो बस वैसी ही हूँ जैसे इस जमीन पर रहने वाले सब लोग होते हैं। मुख्तलिफ तो आप लोग हैं, आप लोग, आपकी जिंदगी हम लोगों से और हमारी जिंदगियों से बहुत मुख्तलिफ।
वैसे आप बोलते भी बहुत अच्छे हैं।
बस आगे लेफ्ट को ले लीजिएगा।
अच्छा अच्छा भिजवा दूंगा।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تیرا حکم ملا تھا سائیں.
ماما ماسٹر ہے بھریرے نے تو کافی دیر سے تم کو حکم بھیجا تھا اور تو اب بھی آیا.
ہو بچوں کو پڑھا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. حکم سائیں.
بیٹھ.
ارے تو کیوں کھڑا ہے؟ تیرے لیے کرسی لاؤں کیا؟ ارے کرسی لاؤں کیا کلارک صاحب؟
ارے بیٹھ جا چورا بیٹھ جا وہیں پہ.
ماسٹر ایک بات کہنی تھی تم سے. اسے میرا حکم سمجھنا, انکار نہیں سنوں گا میں. تم کو تو پتا ہے نا تو پھوگ کمدار ہے میرا.
ہاں صحیح مجھے پتا ہے.
تو پھر میں نے سنا ہے کہ تم نے پھوگ کو ماروی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے.
ماری تو کھیت کی منگا ہے سائیں. سائیں بیٹی کو ایک بار دیا جاتا ہے, بار بار تو
مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے کھیت نے کوئی تم کو ماروی کے پیسے تو نہیں دیے ہیں نا
سائیں. سائیں لڑکی ذات کے لیے تو ایسا مت ہو.
بلے لڑکی ذات. ارے وہاں شہر میں کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے. واہ چاچا ماستر واہ, جیسے ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ارے یہ تو بابا ہم غیرت والے ہیں جو تمہاری لڑکی کا ہاتھ عزت سے مانگ رہے ہیں.
بند کر اپنی زبان ٹکے کا چھوڑا. ارے میری بیٹی کے بدلفظ بولتا ہے. ارے ایسا جوتا ماروں گا کہ سر گھوم جائے گا تیرا. کمینا کمزات کر.
اس گوٹ کا والی وارث میں. سب کی عزت اور پگ کا میرے کوئی خیال رکھنا ہے. فیصلے کرنے والا بھی میں ہی ہوں. ارے اگر اتنا ہی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے نا تو جاؤ جاؤ جا کر کسی اور گوٹ میں بیٹھو. جاؤ
رام سائیں رام سائیں رام سائیں ایسا مت بول. سائیں سائیں میرے بڑھاپے کو دیکھ کر سائیں میں خوار ہو جاؤں گا. سائیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. سائیں سائیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے.
دیکھا نا چاچا ماستر کیا چیز ہے یہ پھوگ خان.
ارے بس بس
تم میرے سر بات پکڑ.
Wonderful my son, beautiful. پتا ہے میں نے سمجھا تمہارا یہ شوق ختم ہو گیا ہوگا.
اے بابا یہ شوق کیسے ختم ہوگا, یہ تو بس چلتا رہے گا. کیا بات ہے بابا آپ ابھی تک جاگ رہے؟
وہ میں سونے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن تمہارے پیانو کی آواز نے مجھے چونکا دیا. میں نے سوچا کہ تم جاگ رہے ہو تو چلو بیٹھ کے کچہری کر لیتے.
ہاں
وہ بیٹا जब तुम मुझ से बाहर थे ना तो तुम्हारी याद मेरे पियानो के करीब आकर बिठा देती थी और मैं इसे बजाने की कोशिश करता था तो तुम्हारी मां मुझे टीज करती थी और मुझे कहती थी कि तुम बिल्कुल एक रिटायर्ड अंग्रेज बूढ़े की तरह लग रहे हो और जिसे सब लोग छोड़कर चले गए हो।
रियली?
नहीं बाबा, नहीं। अम्मी ने बहुत ज्यादा की आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे हाँ, लेकिन ये तो बताओ बेटा, तुमने अपना फैसला तब्दील कर लिया है?
कैसा फैसला बाबा?
बेटा वो जमीनों पर जाने का और शुगर मिल चलाने का।
अच्छा हाँ बाबा, ऐसा है कि देखिए ना, कंप्यूटर साइंस जैसा वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आम रवायती जिंदगी गुजारना कुछ अजीब नहीं लगता।
देखो बेटा, लेकिन इस रवायती जिंदगी में क्या खराबी है जो तुम्हें अजीब लगती है?
फिर बाबा मैं सिस्टम से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं जिसका जाल सिर्फ जमींदारी के गर्द बना हुआ है।
ये सिस्टम तुम्हारे बाप दादाओं की विरासत है। सुनो बेटा, ये सिस्टम तुम्हें दूसरों से सुपीरियर करता है। उमर, अगर तुमने इस सिस्टम की हिफाजत नहीं की तो ये मामूली मामूली लोग तुम्हें और मुझे अपने पैरों तले रोनते हुए गुजर जाएंगे। इसी सिस्टम के बदौलत आज मैं अली नवाज सुमरो एमएनए हूं और तुम उमर इसी सिस्टम के बदौलत अमेरिका से डिग्री लेकर यहां लौटे हो और इस मुल्क के लाखों हजारों नौजवानों से सुपीरियर हो, मुनफरद हो। और क्या चाहिए तुम्हें?
देखे ना, आखिर मैंने भी कुछ ख्वाब देखे हैं।
नहीं नहीं नहीं, छोड़ो इन ख्वाबों को बेटा, क्या रखा है इन ख्वाबों में? उमर समझते क्यों नहीं, ये शोक, ये शोक, ये जमीन, ये गरीब अवाम, ये अदब, आर्ट, फलसफा, बेटा ये सोसाइटी में आदमी के कद बढ़ाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। बेटा ये तुम्हें ताकत नहीं दे सकते। उमर, पावरफुल बनो, पावरलेस मत बनो। और हां, मैं तो जज्बात में तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे लिए एक बड़ी खूबसूरत बंदूक मैंने खरीदी थी जो एक अच्छे शिकारी की मुंतजर है। 5 साल तक तो तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा था। आजकल तुम जब जमीनों पर जाओगे ना, चारों तरफ आसमान में तुम्हें तीतर ही तीतर उड़ते हुए नजर आएंगे। वो मर्द ही क्या जिसका पहला निशाना ही खता जाए। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट?
अरे वहां शहर में छोरों के साथ कॉलेज में पढ़ती है जैसे हमको कुछ मालूम ही नहीं। अरे ये तो हम गैरत वाले हैं जो फिर भी उसका बाजू इज्जत से मांग रहे हैं।
जाओ जाकर किसी और गोट में बैठो, जाओ।